संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 15 जुलाई 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। श्रीलंका में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर यूएन प्रमुख की चिंता और संवाद पर बल। अनाज निर्यात बहाली पर रूस और यूक्रेन के दरमियान तुर्की में अहम बातचीत, जल्द ही और भी प्रगति होने की उम्मीद। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पाती हैं लगभग 25% कम आय। तुर्कीये के रास्ते से सीरिया में मानवीय सहायता जारी रखने के प्रस्ताव को 6 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी। और टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते पर भारत का दृष्टिकोण, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी के साथ संक्षिप्त बातचीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे समाचार आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने भीषण राजनीतिक, आर्थिक व मानवीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम पर चिंता जताई है और हालात से उबरने के लिए समावेशी संवाद पर बल दिया है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने भरोसा दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थानीय जनता के साथ एकजुट है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बुधवार को अपने एक ट्वीट संदेश में सभी पक्षों से हिंसा से परहेज बरतने और एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समाचार माध्यमों के अनुसार आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा देश छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अब अस्थायी रूप से पद की बागडोर संभाली है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कानून के राज का सम्मान करने वाले एक समावेशी संवाद पर बल दिया है। साथ ही नेताओं से आम लोगों के जीवन और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा किए जाने और सुरक्षा बलों से संयम बरतने की पुकार लगाई है। श्रीलंका में पिछले कई महीनों से भोजन, ईंधन और मेडिकल वस्तुओं की किल्लत के कारण व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सरकारी निवास स्थलों पर कब्जे किए जाने की घटनाएं हुई हैं। देश अपने कर्ज की किस्त चुकाने में विफल रहा है, महंगाई चरम पर है और 60 लाख से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का शिकार हैं। इससे पहले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने एक वक्तव्य में श्रीलंका की जनता के साथ एकजुट होने का भरोसा दिलाया था और सभी पक्षों से संवाद में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने सचेत किया कि स्वाधीनता के बाद देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे उबरने के लिए संवाद अहम है। यूएन प्रमुख ने अपने वक्तव्य में सभी हिंसक कृत्यों की निंदा की है और दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने की बात कही है। उन्होंने देश में शांति बनाए रखने की अहमियत को रेखांकित किया है और भरोसा दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका और वहां की जनता को समर्थन देने के लिए तत्पर है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अनाज का निर्यात बहाल करने के मुद्दे पर रूस और यूक्रेन के दरमियान तुर्कीये की राजधानी इस्तांबुल में इस सप्ताह यूएन समर्थित बातचीत में हुई प्रगति को दुनिया भर में मानव तकलीफें कम करने व भुखमरी के हालात आसान करने के लिए उम्मीद की एक किरण करार दिया है। कुछ और जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को कहा कि काला सागर के जरिए लाखों टन अनाज के सुरक्षित निर्यात की इजाजत देने के लिए एक अति महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया है, मगर उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि इस बारे में रूस और यूक्रेन के दरमियान अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। ध्यान रहे कि रूसी आक्रमण के बाद दुनिया भर में अनाज, भोजन पकाने में काम आने वाला तेल, ईंधन, उर्वरक के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई, साथ ही दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आईं। एंटोनियो गुटेरेश ने न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में पत्रकारों से कहा,
Today in Istanbul, we have seen a critical step, a step forward to ensuring the safe and secure export of Ukrainian food products through the Black Sea.
इस्तांबुल में हमने काला सागर के जरिए यूक्रेन के खाद्य पदार्थों का सुरक्षित निर्यात सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम की बढ़त देखी है। वैश्विक संकटों से घिरी एक दुनिया में आज हमें कम से कम उम्मीद की एक किरण नजर आई है।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 25% कम आय अर्जित करती हैं, जो कि अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में वेतन में एक बड़ा लैंगिक अंतर है। ध्यान रहे कि महिलाएं दुनिया भर में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों का लगभग 70% हिस्सा है। स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतर COVID-19 के समय का एक विश्लेषण नामक ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रकाशित की है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य और देखभाल में वेतन समग्र रूप से कम है, जो इस निष्कर्ष के अनुरूप है कि अक्सर महिला प्रमुख क्षेत्रों में वेतन कम दिया जाता है। इसके अलावा महामारी और संकट के दौरान स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2019 और 2020 के बीच वेतन समानता में केवल मामूली सुधार ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में तुर्की के रास्ते से जीवन रक्षक सहायता की आपूर्ति जारी रखने वाला एक प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर दिया है। 6 महीने का ये विस्तार एक मतदान के जरिए स्वीकृत हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
आयरलैंड और नॉर्वे ने ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश किया, जिसमें बाब अल हवा सीमा चौकी के रास्ते से मानवीय सहायता की आपूर्ति जनवरी 2023 तक जारी रखी जा सकेगी। इस प्रस्ताव में जनवरी 2023 के आगे भी 6 महीने के विस्तार का आह्वान किया गया है, जिसके लिए एक अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। सुरक्षा परिषद के 15 में से 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 3 देशों फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मतदान से अनुपस्थित रहे। सीरिया में मानवीय जरूरतें लगभग 1 दशक पहले युद्ध शुरू होने के बाद से अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। सीमा पार से सहायता सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था 2014 से चली आ रही है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs और 2030 एजेंडा पर एक उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम के दौरान इस सप्ताह UN मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों को लागू करने में भारतीय मॉडल को सामने लाना है। हमारे सहयोगी सचिन गौड़ ने भारतीय नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन सुमन बैरी से इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा के विशेष बिंदुओं के बारे में जानना चाहा।
विश्व में ये SDGs जो हैं, सब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जो हैं, इसको उन्होंने स्वीकार किया है कि यही रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि हिंदुस्तान में नीति आयोग ने ये जो लक्ष्य, विश्व के लक्ष्य हैं, इनको देश में कैसे फैलाया है और इसका क्या असर है। और इसका महत्व ये है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये SDGs ने हम सबको सिखाया है कि हर देश में और हर राज्य में भी इनको अटेंशन देना चाहिए। अगर आप अमीर स्टेट हो, अगर गरीब स्टेट हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक किस्म का स्ट्रेटजी कि सबको ये समझाना है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स वगैरह वो तरह तरह के हैं, मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट के भी हैं, राज्य के सरकारों के भी हैं। उनका नतीजा क्या है और उनका नतीजा कैसे स्टैटिस्टिक्स में पकड़ा जा सकता है, ये सबसे ख़ास बात थी। अंत में राज्य और ज़िले भी उसके नीचे, उन लोगों को किसी और का कहना नहीं मानना है, उनको आप समझना चाहिए। तरक्की का चेहरा ऐसा है कि इधर तक पहुंचना है और उनको ये भी समझाना है कि और भी राज्य और भी ज़िले मतलब क्या कर रहे हैं।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।